ओम शांति।
ओम शांति।
आज 31 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास।
टुडे इट इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 31 दिसंबर 1966।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ब्रह्मा तन से समझा रहे।
द स्पिरिचुअल फादर इज एक्सप्लेनिंग टू द फ्रीड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा।
कैसे बच्चों से?
टू व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन?
रूहानी बच्चों से। और रूहानी बच्चे कैसे होते हैं?
टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। एंड हाउ आर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन?
मीठे मीठे स्वभाव संस्कार वाले बोल वाले।
द वंस विद वेरी स्वीट नेचर संस्कार एंड स्पीच।
अगर रूहानी बच्चे नहीं है, देवान में आते हैं, जिस्मानी है।
इफ दे आर नॉट द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, इफ दे बिकम बॉडी कॉन्शियस, इफ दे आर बॉडीली चिल्ड्रन,
तो कड़वी भाषा बोलते होंगे, कड़वे वाइब्रेशन फैलाते होंगे।
दे विल स्पीक बिटर वर्ड्स एंड स्प्रेड बिटर वाइब्रेशन।
ऐसे बच्चों से बाप नहीं बोल समझाए रहे।
द फादर इज नॉट एक्सप्लेनिंग टू सच चिल्ड्रन।
बाप बैठ समझाते हैं।
द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स।
किसमें? ब्रह्मा की तन में।
इन होम? इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा।
अथवा ब्रह्मा को समझी ब्राह्मणों को समझाए रहे।
और ही इज एक्सप्लेनिंग टू द ब्राह्मण्स हु आर द मुख वंशावली ऑफ ब्रह्मा। मुख वंशावली मीन्स प्रोजनी बॉर्न फ्रॉम द माउथ मीनिंग द नॉलेज।
मुख वंशावली ब्राह्मणों को नहीं समझाए रहे हैं, जो ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद को ही याद करते रहते।
ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग टू द कुक वंशावली ब्राह्मण्स हु कीप रिमेम्बरिंग ओनली द वूम मीनिंग द लैप ऑफ ब्रह्मा। कुक वंशावली मीन्स प्रोजनी बॉर्न ऑन द लैप मीनिंग द फिजिकल अफेक्शन।
जो ब्रह्मा की कोख को याद करते हो, गोद को याद करते हो, वो कौन से ब्राह्मण होंगे?
दोज हु रिमेम्बर द वूम ऑफ ब्रह्मा द लैप ऑफ ब्रह्मा व्हाट काइंड ऑफ ब्राह्मण्स विल दे बी?
जिन्होंने गोद ली होगी वो गोद को याद करते होंगे।
दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड द सस्टेनेंस ऑन द लैप विल रिमेम्बर द लैप।
और जिन्होंने गोद ली ही नहीं होगी वो गोद को याद भी नहीं करते होंगे।
एंड दोज हु हैवंट एक्सपीरियंस्ड द सस्टेनेंस ऑन द लैप एट ऑल विल नॉट रिमेम्बर द लैप ईदर।
रसगुल्ला कौन याद करेगा?
हु विल रिमेम्बर द रसगुल्ला? एंड इंडियन स्वीट?
जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो रसगुल्ला को याद करेगा।
द वन हु हैज ईटन अ रसगुल्ला विल रिमेम्बर इट।
खाया ही नहीं होगा तो याद कहाँ से करेगा?
इफ समवन हैजंट ईटन इट एट ऑल हाउ विल ही रिमेम्बर इट?
तो ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को समझा रहे हैं।
सो ही इज एक्सप्लेनिंग टू द ब्रह्मा मुख वंशावली चिल्ड्रन।
मुख वंशावली बच्चे न समझेंगे और न बाप उनको समझाते।
द कुक वंशावली चिल्ड्रन विल नीदर अंडरस्टैंड नॉर डज द फादर एक्सप्लेन टू देम।
कुक वंशावली कौन हुए?
हु आर कुक वंशावली?
यहाँ कोई कुक वंशावली बैठा है जिसने ब्रह्मा की गोद ली हो है? और ब्रह्मा की गोद को याद करता हो?
इज एनी कुक वंशावली ब्राह्मण सिटिंग हियर हु हैज एक्सपीरियंस्ड द सस्टेनेंस ऑफ ब्रह्मास लैप एंड रिमेम्बर्स द लैप ऑफ ब्रह्मा?
कोई बैठा है?
इज एनीबडी लाइक दिस सिटिंग हियर?
कोई कुक वंशावली नहीं बैठा।
नो कुक वंशावली ब्राह्मण इज सिटिंग हियर।
सब मुख वंशावली बैठे हुए।
ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर आर मुख वंशावली।
मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा के मुख से जो बोल निकले उन बोलों को अपने जीवन में धारण करने वाला और दूसरों को दान करने वाला।
मुख वंशावली इज द वन हु असिमिलेट्स इन हिज लाइफ एंड मेक्स अदर्स असिमिलेट द वर्ड्स दैट कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा।
ब्राह्मणों को शिक्षा कौन सी मिलती है?
What teachings do the Brahmins receive?
ब्रह्मा मुख से शिक्षा मिलती है तो कौन सी शिक्षा मिलती है?
They receive the teaching through the mouth of Brahma. So what teaching do they receive?
सृष्टि की आदि मध्य अंत की शिक्षा मिलती है।
They receive the teaching of the beginning, the middle and the end of the world.
जिसके लिए तुम त्रिकालदर्शी भी कहलाए सकते हो।
Because of this, you can also be called त्रिकालदर्शी।
Trikaldarshi means the one who knows about the three aspects of time.
Sudarshan Chakradhari bhi kehlai sakte ho.
You can also be called Sudarshan Chakradhari, means spinner of the discus of self-realization.
Vishnu koi Sudarshan Chakradhari nahi hai.
Vishnu is not Sudarshan Chakradhari.
Kya?
What?
Jo Vishnu ko chakra de diya hai chitro mein, vastav mein woh Vishnu ke haath mein chakra nahi hai, to mukhavansavali brahmano ke haath mein, kaun se haath mein?
Actually, the discus that Vishnu is given in the pictures is not in the hand of Vishnu, but in the hand of you mukhavansavali brahmins. In which hand?
Buddhu ke haath mein Sudarshan chakra hai.
The discus of self-realization is in the hand-like intellect of you children.
Swa mane atma, darshan mane 84 janmo ka darshan, chakra mein.
Swa means the soul. Darshan means seeing the 84 births in the cycle.
Satyuga treta dvapara kaliyuga rupi jo chakra hai, usme 84 janma hum kaise lete hain? ये हम देखते हैं.
We see how we have the 84 births in the cycle of the golden age, the silver age, the copper age and the iron age.
न तो कोई कृष्ण को सुदर्शन चक्र है और न विष्णु को सुदर्शन चक्र है.
Neither Krishna has any Sudarshan Chakra nor does Vishnu have a Sudarshan Chakra.
कृष्ण तो सत्ययुग में जन्म लेगा.
Krishna will be born in the golden age.
वहाँ सुदर्शन की बात ही नहीं.
There is no question of Sudarshan there.
Aur Vishnu Satyuk devata.
And Vishnu is a pure deity.
Usko to nayi duniya ki palna karni hai.
He has to sustain the new world.
Unhe Sudarshan chakra chalane se kya lena dena?
What has he got to do with the idea of rotating the Sudarshan chakra?
To tum brahmano ki baat hai.
So it is about you brahmins.
Krishna ko to unhone hinsa karne ke liye Sudarshan chakra de diya.
They gave the Sudarshan Chakra to Krishna to use violence.
किन्होंने?
Who?
उन देहधारी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों में ये दिखाई दिया है कि कृष्ण ने हिंसा की.
Those bodily religious gurus have shown in the scriptures that Krishna used violence.
चक्र घुमाते गए और हिंसा करते गए.
He rotated the discus and committed violence.
वास्तव में हम अपने 84 जन्मों का जितना जितना साक्षात्कार करते जाएंगे.
एक्चुअली द एक्सटेंट टू विच वी हैव द विजन्स ऑफ अवर 84 बर्थ्स,
उतना उतना हमारे अंदर से आसुरी संस्कार झड़ते जाएंगे.
द डेविलिश संस्कार्स विल बी शेड ऑफ फ्रॉम अस टू दैट एक्सटेंट.
आसुरी संस्कार हमारे अंदर से भी खत्म होंगे और इस दुनिया के अंदर से भी आसुरी संस्कार खत्म होंगे.
The devilish sanskars will end in us and the devilish sanskars will end in this world as well.
Isme koi hinsa ki baat nahi hai.
There is nothing about violence in this.
Tumhara aim object hai nar se narayan aur nari se lakshmi banne ka.
Your aim and objective is to become narayan from a man and lakshmi from a woman.
Tumhare samne chitra bhi hai.
There is also the picture of lakshmi and narayan in front of you.
To samajh bhi sakte ho. अभी हमको फिर से ऐसा दैवी गुण धारण करने वाला देवता बनना है.
सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ वी हैव टू बिकम अ डीटी लाइक दिस टू एसिमिलेट द डिवाइन वर्च्यूज अगेन.
इन्हें लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखना पड़े कि ये दैवी गुण संपन्न थे.
इट हैज टू बी रिटन इन द पिक्चर ऑफ दिस लक्ष्मी नारायण ऑल्सो दैट दे वर कम्प्लीट विद द डिवाइन वर्च्यूज.
ऐसा ही तुम बच्चों को बनना है.
यू चिल्ड्रन हैव टू बिकम जस्ट लाइक दिस.
सर्व दैवी गुण सारा धारण करने से तुम संपूर्ण बन जाएंगे.
यू विल बिकम कम्प्लीट बाय एसिमिलेटिंग ऑल द डिवाइन वर्च्यूज.
सबसे पहले नंबर का ज्ञान है निर्विकारी बनना.
द नंबर वन नॉलेज इज टू बिकम वाइसलेस.
सर्वगुण संपन्न बनना है.
यू हैव टू बिकम कम्प्लीट विथ ऑल द वर्च्यूज.
इन देवताओं में कोई देहाभिमान अथवा काम क्रोध विकार नहीं है.
These deities do not have any body consciousness or the vices of lust and anger.
इनको दैवी गुण संपन्न कहा जाता है.
They are called complete with the divine virtues.
अब तुम जानते हो कि हम दैवी घराने वाले जब हार खाते हैं तो ऐसे राक्षसी गुणों वाले बन जाते हैं।
Now you know when you who belong to the divine family face defeat, you become the ones with such devilish traits.
हम ही सुखिर देवता थे फिर हमने 84 जन्म लिए।
We ourselves were deities. Then we had 84 births.
किसने?
Who?
हमने 84 जन्म लिए।
We had 84 births.
उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। किन्होंने?
Those ones didn't have 84 births. Who?
उन कुकवंशावली ब्राह्मणों ने 84 जन्म नहीं लिए।
Those Kukvanshavali Brahmins didn't have 84 births.
ये क्या बात?
What is this?
मुखवंशावली ने 84 जन्म लिए।
The Mukhvanshavali had 84 births.
मुखवंशावली वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने।
The Mukhvanshavali are the ones who accept the words that come out from the mouth of Brahma.
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरलियों की बातों को जो मानते हैं वो है मुखवंशावली ब्रह्मा।
The ones who accept the words of the murlis that come out from the mouth of Brahma are the Mukhvanshavali Brahmins.
वो 84 जन्म लेने वाले।
They are the ones who have 84 births.
और जो नहीं मानते हैं कुकवंशावली ब्राह्मण हैं।
And the ones who don't accept who are the Kukvanshavali Brahmins.
ब्रह्मा की गोद को या उनके स्वरूप को याद करते हैं।
Who remember the lap of Brahma or his form.
देह को याद करते हैं उनके चित्र को याद करते हैं।
Who remember his body, who remember his picture.
वो कुकवंशावली ब्राह्मण 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं है।
Those Kukvanshavali Brahmins are not the form deities who have 84 births.
अच्छा चलो कम जन्म लेने वाले हैं। तो कम जन्म लेने से क्या अंतर पड़ जाएगा?
All right, they are the ones who have fewer births. So what difference will it make by having fewer births?
जिनके पूरे 84 जन्म होंगे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे उनमें और कम जन्म लेने वालों में अंतर क्या पड़ेगा?
What will be the difference between the ones who have the full 84 births, meaning the ones who will play the all-round part and the ones who have fewer births?
जो all-rounder part बजाने वाले होंगे वो दूसरे धर्म में convert नहीं होते।
The ones who play the all-round part do not convert to other religions.
और जिनके कम जन्म होते हैं कम कलाएं होती हैं वो दूसरे धर्मों में द्वापर युग से convert हो जाते हैं।
And the ones who have fewer births, who have fewer celestial degrees, convert to the other religions from the copper age.
तो हम ही 84 जन्म देने वाले देवता थे वर्ण के।
So, we ourselves were the ones from the deity class who had 84 births.
देवता से क्षत्रिय बनते हैं पहले, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और फिर ब्राह्मण बने।
We become kshatriyas from deities first. From kshatriyas we become vaishyas. From vaishyas we become shudras. And then we have become Brahmins now. Kshatriyas, members of the warrior class. Vaishyas, members of the merchant class. Shudras, members of the fourth and the lowest division of the Indo-Aryan society.
अभी हम देवता वंश के बनेंगे।
Now we will become the ones belonging to the dynasty of the deities.
इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सत्व प्रधान बनना है।
That is why we have to assimilate the divine virtues. We have to become Sato Pradhan.
ये समझना और फिर समझाना बहुत जरूरी है।
It is really necessary to understand this and explain it to others.
बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए।
This topic should sit in the intellect.
जो समझते हैं और समझाते हैं वो ही बनेंगे।
Only the ones who understand it and explain it to others will become deities.
जो करेंगे सो पाएंगे।
Those who explain it to others will get the position of deities.
इस समय सब मनुष्य आसुरी गुण वाले।
At the present time, all the human beings have devilish traits.
रावण राज्य।
It is the kingdom of Ravan.
रावण राज्य में तो यह था राजा तथा प्रजा।
In the kingdom of Ravan, as is the king, so are the subjects.
गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब भ्रष्टाचारी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही
The government also wants everyone to become corrupt because the government itself is corrupt.
सब पतित है।
Everyone is sinful.
तुम्हारी ये भी रूहानी गुप्त गवर्नमेंट है।
Now This is your spiritual secret government.
सिवाय गवर्नमेंट के स्वराज्य कोई स्थापन नहीं कर सकता.
No one other than the spiritual government can establish their self-sovereignty.
वो गवर्नमेंट जब स्थापन हुई, कांग्रेसी गवर्नमेंट.
When that government, the Congress government was established,
तो बापू गांधी ने बीड़ा उठाया कि हम स्वराज्य स्थापन करेंगे.
बापू गांधी took up a challenge. We will establish self-sovereignty.
लेकिन स्वराज्य तो स्थापन हुआ नहीं और ही रावण राज स्थापन हो गया.
But the self-sovereignty was not established. The kingdom of Ravan was established all the more.
ये रूहानी गवर्नमेंट है.
This is the spiritual government.
और उनकी है जिस्मानी गवर्नमेंट.
And this is the physical government.
परंतु कृष्ण का नाम डालने से पांडवों को भी जिस्मानी ताज आदि दे दिया है.
But by inserting the name of Krishna, they have given a physical crown and so on to the Pandavas as well.
नाम किसका डाल दिया है?
Whose name is inserted?
गीता में नाम किसका डाला है?
Whose name is inserted in the Gita?
कृष्ण का नाम डाला है.
They have inserted the name of Krishna.
शूटिंग किसने की?
Who did the shooting?
कृष्ण का नाम डालने की किसने शूटिंग की?
Who did the shooting of inserting the name of Krishna?
ब्रॉड ड्रामा में जो गीता लिखी गई मनुष्यों के द्वारा, उसमें बाद में कृष्ण का नाम डाला गया.
In the broad drama, the Gita that was written by the human beings, Krishna's name was added in it later on.
वो तो 2500 साल की बात हुई.
It is about the 2500 years.
भक्ति मार्ग की बात हुई.
It is about the path of bhakti.
इस समय ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग का काम चल रहा है.
The task of the shooting is going on in the confluence age world of the Brahmins now.
Director आकर के shooting कराई रहा है, rehearsal कराई रहा है.
The director has come and is enabling us to do the shooting, the rehearsal when he comes.
तो यहाँ जो हमारी गीता है, वो गीता कौन सी है? गीता माता.
So which is our Gita? The mother Gita here.
Brahma हमारी गीता माता.
Brahma is our mother Gita.
और गीता माता में जो मुख से ज्ञान निकला, वो हमारी सच्ची गीता हुई.
And the knowledge that came out from the mouth of the mother Gita is our true Gita.
उस सच्ची गीता में पहले लिखा होता था.
Earlier, it was written in the true Gita.
क्या लिखा होता था?
What was written?
शिव बाबा याद है.
Do you remember शिव बाबा?
बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसमें लिखा गया पिता श्री शिव बाबा याद.
Later on, when mamma was about to leave her body and was hospitalized, it was written, Do you remember पिता श्री शिव बाबा?
अब पिता श्री तो ब्रह्मा को कहा जाता है.
Now, ब्रह्मा is called पिता श्री.
जो पिता श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है.
The father who is going to become elevated later on.
अभी तो मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला.
Now he is a human being with a beard and a mustache.
जो बाद में श्रेष्ठ बनेगा वो पिताश्री शिव बाबा याद है.
The one who will become elevated later on, do you remember that पिताश्री शिव बाबा?
माने शिव बाबा कौन हो गया?
It means who became शिव बाबा?
ब्रह्मा का रूप ही शिव बाबा का रूप हो गया.
The form of Brahma itself became the form of Shiva Baba.
भले मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया क्या?
Although they say through their mouth, Krishna is not God of the Gita, but what did they do in practice?
प्रैक्टिकल में साकार में अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए कि साकार में गीता का भगवान कौन है, तो वो किसको बताएंगे?
If we ask the Brahma Kumar Kumaris, who is the corporeal god of the Gita in practice, what will they say?
Dada Lekhraj Brahma ko batayenge?
They will say Dada Lekhraj Brahma.
Ab Dada Lekhraj Brahma to Krishna ki soul?
Now, Dada Lekhraj Brahma is the soul of Krishna.
To baat to wohi ho gayi, ke Krishna ka naam Gita mein dal diya na.
So, it is one and the same thing that they inserted the name of Krishna in the Gita, didn't they?
वास्तव में ये रंग है
एक्चुअली दिस इज रॉन्ग.
यज्ञ के आदि में गीता ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ था.
The task of sowing the seed of the knowledge of the Gita didn't take place through Brahma Baba at the beginning of the Yajna.
Brahma Baba, jaisa naam hai, Brahma. Brahma mane badi maa.
Brahma Baba, as is the name Brahma, Brahma means the senior mother.
Us badi maa ne to gyan ko jeevan mein dharan kiya.
That senior mother assimilated the knowledge in her life.
Bija ropan karne wala koi vyakti dusra tha.
The person who sowed the seed was someone else.
जिनके लिए मुर्गियों में आया है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे. आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं.
For him it has been said in the Murlis, there were such children who gave directions to Mamma and Baba. They made them perform the drill. They sat as teachers. Those children are not present in the Yajna today.
कारण या कारण चले गए.
They left the yajna because of some or other reason.
फिर कारण भी बताया क्यों चले गए.
Then the reason was also mentioned. Why did they leave the yajna?
क्योंकि उस समय यह इतना ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं था.
It is because the knowledge wasn't so advanced at that time.
वो आत्माएं तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे.
Those souls were the intellectual children of the intelligent father.
जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा था.
When the yajna started, the foundation of the path of bhakti was being laid.
Om Om ध्वनि का उच्चारण होता था.
The sound Om Om used to be pronounced.
जैसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सृष्टि की जब रचना की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला शब्द निकला ओम.
Just like it is written in the scriptures as well, when the creation of the world started, the first word that emerged from the mouth of Brahma was Om.
बात कहाँ की है.
Which time is it about?
ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की फाउंडेशन की बात है.
It is about the time of the foundation of the confluence age world of the Brahmins.
पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे.
They sat and narrated the meanings of the old Sanskrit Gita.
ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई.
This is also about the path of bhakti.
परंतु वो गीता के अर्थ उस समय संपन्न स्टेज को नहीं थे.
But those interpretations of the Gita were not in its complete form at that time.
इसलिए वो बच्चे छोड़ करके चले गए.
That is why those children left the yajna and went away.
लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ.
But where will they go after leaving the yajna?
ब्राह्मण जीवन में जो एक बार जन्म लेता है, जो एक बार पढ़ाई पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उसकी अविनाशी हो जाती.
The one who is born as a Brahmin once, who studies the study once, his study becomes imperishable.
बल शरीर छोड़ देवे तो भी दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा फिर वही ज्ञान उठाती.
Although it leaves the body, even then that soul is born again and takes the same knowledge.
वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसका ऐड हो जाता है.
The knowledge received in its previous birth is added.
इसलिए मुरली में बोला राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण दे दिया.
This is why it is said in the Murli, Ram failed, so he was given a bow and arrows.
क्या.
What?
ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया.
He got the arrows of knowledge and the bow of पुरुषार्थ, that is spiritual effort.
जाओ अपना कमाओ और अपना खाओ.
Go on your own and eat.
किसी के अधीन रहने की दरकार नहीं है.
देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन.
तो क्या अकेली राम वाली आत्मा ही गई या और भी सूर्यवंशी बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे गए.
सो डिड द सोल ऑफ राम गो अलोन और वेर देयर अदर सूर्यवंशी चिल्ड्रन ऑल्सो हु फॉलोड हिम. सूर्यवंशी मीन्स दोज हु बिलोंग टू द सन डायनेस्टी.
यज्ञ के आज में परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान दिया.
When the supreme soul Shiva entered at the beginning of the yajna, he narrated the knowledge to the sun first of all.
और सूर्य ने ज्ञान लिया तो सूर्य के बच्चों ने भी लिया.
As soon as the sun received the knowledge, the children of the sun received it too.
वो सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में ही चले गए.
Those सूर्यवंशी children went away at the very beginning of the yajna.
बचे कौन.
Who remained?
ब्रह्मा बचे और ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाले बच्चे बचे.
Brahma and the children who followed the life of Brahma remained.
Brahma ko koku ko yaad karne wale bacche bane.
They became the children who remembered the life of Brahma.
Wo bache?
They remained.
Murli mein to 20 baar aaya hai ki Brahma ka chitra nahi rakhna hai. Agar tum bacche Brahma ka chitra rakhenge to patit ho jayenge.
It has come in the Murlis a good number of times. You shouldn't keep the picture of Brahma. If you children keep the picture of Brahma, you will become impure.
लेकिन जो कुकवंशावली होंगे वो कोक की बात को ज्यादा ध्यान देंगे या मुख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे?
But will the Kukvanshavali pay more attention to the lap or will they pay more attention to what is said through the mouth?
मुख की बात को ध्यान नहीं दे सकते.
They cannot pay attention to what is said through the mouth.
तो उन्होंने बाबा के चित्र को अभी तक भी नहीं छोड़ा.
That is why they haven't left the picture of Baba until now.
मुरली में भले बोला गया कि ब्रह्मा का चित्र समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में रखा ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं.
Although it was said in the Murli, the picture of Brahma is anyway kept in the Trimurti for the explanation. There is no need to keep a separate picture of Brahma.
लेकिन जिनकी समझ में नहीं आना है, जिनको वर्षा नहीं लेना है पूरे 84 जन्म का, डायरेक्ट बाप से वो नहीं ले सकते.
But those who do not have to understand, those who do not have to take the inheritance of the complete 84 births directly from the father can't take it.
राधा कृष्ण जैसी आत्माएं वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगी या अपने माँ बाप देवी देवताओं से वर्षा लेंगी?
Will the souls like Radha and Krishna take the inheritance directly from God the Father or will they take the inheritance from their parents, the deities?
Devi devataon se varsha le.
They will take the inheritance from the deities.
To jo devi devata hai wo jo purusharth karke devatva pad paate hai.
So the deities who make purusharth on their own and attain the divine position
aur direct bhagwan se pad paate hai.
Who attain the position directly from God?
नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं.
Who become नारायण from नर, meaning man, and लक्ष्मी from नारी, directly?
वो ऊंचे हुए.
Are they high?
या जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं जन्म लेकर वो ऊंचे हुए.
Or are those who receive attainments after being born from the deities more elevated?
डायरेक्ट जो प्राप्ति करते हैं वो ऊंचे हुए.
Those who receive attainments directly from God are elevated.
इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो और तुम पूरे 84 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो.
That is why the father says, you are my mukhvanshavali children and you take the inheritance of the complete 84 births.
एक जन्म भी तुम्हारा कम नहीं होता है.
There is not even a single birth left for you.
मैं तुमको सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ.
I explain to you sitting face to face.
उन कुकवंशावली ब्राह्मणों को मैं सन्मुख बैठ करके नहीं समझाता हूँ.
I don't explain to those Kukvanshavali Brahmins sitting face to face.
तुम उनको कितनी भी बार जा करके कहो.
No matter how many times you go and tell them.
निमंत्रण दे करके आओ कि आकर के सुनो भगवान आया हुआ है.
You go and give them an invitation. Come and listen. God has come.
उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं. क्यों नहीं बैठेगा?
It will not sit in their intellect. Why won't it sit?
क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं.
It is because they are the souls who convert.
जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो यज्ञ के आज में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया.
The weak souls who convert didn't pay attention even in the beginning of the yagya.
ब्रह्मा की बातों पर नहीं ध्यान दिया.
They didn't pay attention to the words of Brahma.
अभी गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उन बातों पर भी ध्यान नहीं देती.
The soul of Brahma enters the body of Dadi Gulzar now. They don't pay attention to those words either.
अगर आप उनको समझाएं कि ब्रह्मा बाबा ने इस बात को इस अर्थ में कहा है.
If you explain to them, Brahma Baba has said this with this meaning.
तो कहेंगे ये तुम्हारी अपने बाबा की मुरली है, हमें सुनने की दरकार नहीं है.
They will say, this is the murli of your Baba. We don't need to listen to it.
बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे ही स्वराज्य स्थापन करेंगे.
The father says, Only you, my Mukhvanshavali children, will establish the kingdom of self-sovereignty.
Mukhvanshavali swaraj sthapan nahi kar sakte.
The Mukhvanshavali Brahmins cannot establish self-sovereignty.
Ye ruhani government hai, in baaton ko abhi tumhare siway koi nahi samjhega.
This is the spiritual government. Apart from you, nobody else will understand this topic.
Abhi tum bachchon ko apni avastha ko jamana hai.
Now, you children have to set your stage.
Maya tumhari avastha ko upar niche karegi.
Maya will make your stage go up and down.
Khub pariksha legi.
She will test you a lot.
Lekin kya karna hai?
But what do you have to do?
Apni avastha ko majboot bana kar ke rakhna hai.
You have to make your stage strong.
Abhi to sampurna koi nahi hai.
No one is complete yet.
Agar koi sampurna ban jaye to phir ye sharir rahega hi nahi.
If someone becomes complete, this body will not remain at all.
Atma sampurna ban jaye to sharir ka ban nahi rahega.
When the soul becomes complete, there won't be the consciousness of the body.
Aur jab sharir ka ban nahi rahega to atma to unchi stage mein udegi.
And when there is no consciousness of the body, the soul will fly in a high stage.
Karmatit avastha ho gayi, atma pure ho gayi.
Once it attains the karmatit stage, the soul becomes pure. Karmatit stage means stage beyond karma.
To yahan aise duniya mein rehne sake.
It cannot stay here in this world.
Kaun si duniya mein?
In which world?
Dukdham mein rehne sake.
It cannot stay in Dukdham, meaning abode of sorrow.
बाप से हमें साई का वर्षा मिलना है, शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलना है.
What inheritance will we get from the father? He will get the inheritance of the abode of peace and the abode of happiness.
मिलेगा तब जब हम आत्मिक स्टेज में टिकने की अभ्यास हो जाए.
We will receive it when we become practiced to remain stable in the soul conscious stage.
देवान भूल जाए, देह की स्मृति न आए, देह के संबंधियों की स्मृति न आए.
We should forget body consciousness. We shouldn't remember the body. We should not remember the bodily relationship.
ज्ञान कौन सा ले रहे हैं?
What knowledge are we receiving?
रूहानी ज्ञान ले रहे हैं, रूहानी शिक्षा ले रहे हैं.
We are receiving spiritual knowledge. We are receiving spiritual education.
तो अवस्था भी तो वैसी बनानी पड़े. कैसी अवस्था?
So, we will also have to make our stage such. What kind of a stage?
इसमें देह और देह के संबंधों की कोई बदबू ना आती हो.
The stage in which no bad odor of the body and the bodily relationships comes.
हमारा जीवन ऐसा बन जाए जिसमें हमें देह के संबंधों में बुद्धि को टिकाने की दरकार ही न पड़े.
Our life should become such that we don't feel the need to fix our intellect in the bodily relationships at all.
बाप तो आते ही है प्योर बनाने के लिए.
The father certainly comes to make us pure.
इतनी प्योर बुद्धि बनाए देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि रावण राज्य से बिल्कुल दूर हो जाए.
He makes your intellect so pure that it goes completely far away from the kingdom of Ravan.
सत्युग में तो देखो कोई भी पुकारेगा नहीं.
No one will call him in the golden age.
इसको भगवान को.
Who? God.
द्वापर कलयुग में पुकारते.
They call him in the copper and iron ages.
संगम युग में भगवान जब आते हैं तो अपने आप आते हैं या पुकारने के बाद आते हैं?
When God comes in the confluence age, does he come on his own or does he come after being called?
हैं? अपने आप आते हैं.
He comes on his own.
और तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है और ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं?
एंड व्हाट डू द सो कॉल्ड ब्राह्मण थिंक? दे थिंक दैट द सोल ऑफ ब्रह्मा कम्स इन दादी गुलजार एंड शिव बाबा कम्स इन ब्रह्मा.
तो पुकारने से आते हैं, आह्वान करने से आते हैं, ये अपने आप आते हैं?
सो डज ही कम ऑन बीइंग कॉल्ड, ऑन बीइंग इनवोक्ड और डज ही कम ऑन हिज ओन?
आह्वान करने से आते हैं.
He comes on being invoked.
तो आह्वान करने से भूत प्रेत भी आते हैं.
So ghosts and spirits come on being invoked.
आह्वान करने से देवताएं भी आते हैं.
Deities also come on being invoked.
आह्वान करना जो होता है वो देह अभिमानियों को आह्वान करना होता है.
Invoking is invoking the body conscious ones.
आत्मा अभिमानी जो सदैव है, जिसको कहते हैं सदा शिव, उसको कोई मान मर्तबा लेने की दरकार नहीं है।
The one who is always soul conscious, who is called Sadashiv, that is ever beneficial, doesn't need any respect and honor.
वो तो बिना बुलाए आता है।
He comes without being called.
ऐसे नहीं कि वो निमंत्रण दिया जाएगा तब वो आएगा।
It is not that he will come only when he is given an invitation.
63 जन्म भी वो निमंत्रण देने पर नहीं आया।
He didn't come on being invited in the 63 births either.
जब आया तो अपने आप आया।
When he came on his own.
तो बाप जब प्रवेश करते हैं तो कोई को पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं।
So when the father enters, no one comes to know when he comes and when he goes.
और मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो सबको पता चल जाता है, चेहरा मोरा बदल जाता है।
But everyone comes to know when human souls enter, the facial expression changes.
क्यों बदल जाता है?
Why does it change?
क्योंकि सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है।
It is because the subtle body exerts pressure.
Supreme soul तो ज्योति बिंदु।
The supreme soul is a point of light.
उनको तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो स्थूल शरीर भी नहीं।
He neither has a subtle body nor a physical body.
तो दबाव किस चीज का पड़ेगा?
Then what will exert pressure?
वो तो हल्की फुल्की आत्मा है।
He is a light soul.
जिस तन में भी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मा रखती है और ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के बोलती है।
Whichever body he enters is named Brahma and he comes and speaks through Brahma.
अब वो चाहे ब्रह्मा माँ के रूप में हो और चाहे वो ब्रह्मा टीचर के रूप में हो।
Now, whether that Brahma is in the form of the mother or in the form of the teacher.
टीचर के रूप में आकर के गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते।
He comes in the form of the teacher and gives the clarification of the knowledge of the Gita.
क्लैरिफिकेशन जब देते हैं तो एक एक मुरली के महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझा देते।
When he gives the clarification, he explains every great sentence of the Murli word by word.
मुरली का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रह जाता जो कोई ब्राह्मण समझ न सके।
Then there is no sentence of the Murli that a Brahmin does not understand.
और बाप एक एक बात क्लियर करके समझाते।
And the father explains each and every topic clearly.
देहधारी धर्म गुरुओं की सभा में कोई बीच में प्रश्न नहीं कर सकता है।
No one can ask questions in the gatherings of the bodily religious gurus.
सवाल जवाब नहीं कर सकता।
They cannot ask questions and get answers.
और बाप कहते हैं मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों को आकर के समझाता हूँ।
And the father says, I come and explain to few children.
मैं लाउड स्पीकर पर आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता।
I don't come and teach through loud speakers.
मैं थोड़े थोड़े बच्चों को इसलिए समझाता हूँ कि बच्चे अपनी एक एक शंका का समाधान कर सके।
I explain to few children so that the children can clear their every doubt.
तो कितना अंतर है?
So there is a vast difference.
उन गुरुओं में कितना अंतर है और बाप की पढ़ाई में कितना अंतर है?
There is a vast difference between those gurus and the teachings of the father.
ये सब बातें बच्चों के ध्यान में रहनी चाहिए।
The children should be aware of all these topics.
अपने पर भी ध्यान देना, हमारे में कौन सा आसुरीय गुण है?
You should also check yourself, which devilish traits do I have?
देहाभिमान होने से मेरे आसुरीय गुण आ जाते हैं।
Devilish traits come because of body consciousness.
देवताएं भी जब बाम मार्ग में जाते हैं तो आसुरी गुणों में लटक पड़ते हैं।
Even when the deities go on the left path, that is Vam Marg, they entangle themselves in devilish traits.
Vam Marg माने?
What does Vam Marg mean?
बाया मार्ग।
The left path.
बाया मार्ग कब से शुरू होता है? कैसे?
From when does the left path start? Students, from the copper age. How?
द्वापर इब्राहिम की डाली जो इस्लाम धर्म की डाली है वो पहले निकलती है।
The branch of Abraham, which is the branch of Islam, comes out first.
वो इस्लाम धर्म की डाली बाई ओर मुड़ती है।
That branch of Islam turns to the left.
बाया हाथ जो है वो असुर सूचक होता है।
The left hand symbolizes inauspiciousness.
दाया हाथ शुभ सूचक होता है।
The right hand symbolizes auspiciousness.
दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं और बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है.
Donations are given and good actions are performed through the right hand and dirt is cleaned with the left hand.
तो दुनिया में जो भी धर्म आए उनमें कोई धर्म है दाईं ओर के बातीय धर्म और कोई धर्म है बाईं ओर के.
So whichever religions came in the world, among them some religions belong to the right side, the Indian religions, and some religions belong to the left side.
जो बाईं ओर के धर्म है वो सब विदेशी धर्म.
All the religions belonging to the left side are the videshi, that is foreign religions.
Videshi dharmon mein vivichar ko bura nahi mana jata.
Adultery is not considered bad in the videshi religions.
Ek stri apne jeevan mein aneko shaadiyan kar sakti hai aur sab usko badi achhi drishti se dekhte
hain. A woman can marry several times in her life and everyone respects her.
Jo zyada bacche paida kare unko inaam bhi milte hain.
The ones who give birth to more children are also rewarded.
उस हिसाब से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कुत्ते बहुत पालते हैं.
In accordance with this, the Christians who give birth to many children wear dogs a lot.
उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है क्योंकि कुत्ते कुतरिया बहुत प्यार बहुत बच्चे पैदा करते हैं.
They love dogs a lot because dogs and bitches give birth to many puppies.
भारत में व्यभिचार को बहुत बुरा माना जाता है.
Adultery is considered to be very bad in Bharat.
भारत में एक स्त्री अपने जीवन में एक ही पति करेगी.
A woman in Bharat will have only one husband in her life.
अगर कहीं दूसरा पति किया तो बहुत बुरा माना जाता है.
If by chance she has another husband, it is considered to be very bad.
मुसलमानों में भी ऐसे ही है.
It is the same even among the Muslims.
मुसलमानों ने तो शुरुआत ही की व्यभिचार की.
It is the Muslims who started adultery.
क्योंकि अगर वो द्वापर युग की शुरुआत में व्यभिचार न करते तो उनकी जनरेशन नहीं बढ़ती.
It is because if they didn't start adultery in the beginning of the copper age, their generation wouldn't have increased.
आज भी मुसलमान जनरेशन बढ़ाने के शौकीन है.
Even today, the Muslims are fond of increasing their generation.
हर देश में दुनिया में जनसंख्या को बढ़ाने से रोक रहे हैं और मुसलमान लोग जनसंख्या को बढ़ाने से रोकते नहीं हैं.
Every country in the world is preventing the increase of population, but the Muslims don't prevent the increase of population.
वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी जनरेशन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा दुनिया में फैलते जाएं और सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये उनका लक्ष्य रहता है.
Their aim is to give birth to as many children as possible, to increase their generation as much as possible, to spread in the world as much as possible, and take the entire world under control.
भारतवासी आत्माएं ऐसी नहीं रही.
The Bharatvasi souls were not like this. Bharatvasi, residents of Bharat.
बच्चे पैदा करने हैं तो शेर जैसा एक बच्चा अच्छा या गीदड़ों जैसे सैकड़ों बच्चे पैदा करना अच्छा.
When it comes to give birth to children, is it better to have one child brave like a lion or is it better to give birth to 100 children who are coward like a jackal?
एक बच्चा शेरों जैसा होना चाहिए.
There should be one child like a lion.
तो ऐसे ही सतयुग में जो आठ नारायण होते हैं वो आठ नारायणों की डायनेस्टी नंबर वार डायनेस्टी है.
सो सिमिलरली इन द गोल्डन एज द डायनेस्टीज ऑफ द एट नारायण आर नंबर वाइज, दैट इज वन ग्रेटर देन द अदर अकॉर्डिंग टू देयर रैंक.
पहला नारायण शेर जैसा.
द फर्स्ट नारायण इज लाइक अ लायन.
दूसरा नारायण टाइगर जैसा.
द सेकंड नारायण इज लाइक अ टाइगर.
और तीसरा नारायण हाथी जैसा.
And the third Narayan is like an elephant.
Chautha Narayan, ghode jaisa.
The fourth Narayan is like a horse.
Gati girti jati hai. Aakhri Narayan gadhede jaisa.
The stage progressively degrades. The last Narayan is like a donkey.
To gadhedon ki majaat ka raja banna acha hai या शेर की मजाक का छोटा बच्चा बनना अच्छा है?
सो इज इट बेटर टू बिकम अ किंग ऑफ द डोंकी फैमिली or is it better to become a small child of the lion family?
शेर की मजात में कोई छोटा बच्चा बन रहा हो और गधेड़ों की मजात में कोई राजा बन रहा हो गधेड़ों का तो क्या बनना अच्छा है?
If someone is becoming a small child in the family of lions and if someone is becoming a king of the donkeys in the family of donkeys, it is better to become what?
शेरों की मजात का छोटा सा बच्चा भी बन जाए वो ज्यादा अच्छा है।
It is better to become even a small child in the family of lions.
माना पहली जो डायनेस्टी है जो डायरेक्ट बाप शिव से प्राप्ति करती है वो शेरों की डायनेस्टी हुई।
It means that the first dynasty that receives the attainments directly from the father Shiv is the dynasty of the lions.
इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में शेर को अथवा टाइगर को नेशनल एनिमल माना जाता है।
That is why in our Indian tradition, the lion or the tiger is considered to be the national animal.
ये ऊंचे से ऊंचा लकब दिया हुआ है।
It has been given the highest and high title.
झंडे का चित्र है, उसमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं।
Three lions are even shown in the picture of the flag.
Note, उसमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं। अशोक की लाट उसमें भी तीन शेर दिखाते हैं।
Three lions are shown in the currency notes as well as on the pillar of Ashok. The pillar of Ashok is a historical memorial at Sanchi, which has four lions at the top. This was adopted as the Indian emblem.
और जो कोर्ट के स्टाम्प होते हैं उसमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं।
And three lions are shown in the judicial stamps as well.
ये तीन शेर किसकी यादगार है?
Whose memorial are these three lions?
ब्रह्मा विष्णु और शंकर की यादगार।
They are the memorial of Brahma, Vishnu and Shankar.
ये ऊंचे से ऊंचे तबके के देवताएं हैं।
They are the deities of the highest level.
जब बाप शिव आते हैं तो उनके साथ साथ ये तीन शेर जैसी आत्माएं भी सृष्टि पर आती हैं और नंबर वार पार्ट बजाती हैं।
When the father Shiva comes, these three lion-like souls also come to this world along with him and play their part number wise. That is, one after the other, according to their time.
पहले पहले प्रत्यक्ष होने वाली देवमूर्ति ब्रह्मा कही जाती।
The divine personality which is revealed first of all is called Brahma.
जो तीन पुरियां दिखाई गई हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसमें ब्रह्मा है नीचे तबके का।
Among the three abodes that are shown, the abode of Brahma, the abode of Vishnu and the abode of Shankar, Brahma belongs to the lowest level.
साकार सृष्टि के नजदीक है।
He is close to the corporeal world.
दुखदाम की सृष्टि के नजदीक है या सुखदाम की सृष्टि के नजदीक है?
Is he close to the world of the abode of sorrow or close to the world of the abode of happiness? Students, the abode of sorrow.
दुखदाम की सृष्टि के नजदीक है ब्रह्मा।
ब्रह्मा is close to the world of the abode of sorrow.
और शांति धाम की सृष्टि के नजदीक कौन है? शंकर।
And who is close to the world of the abode of peace? Students, Shankar. Shankar.
और दोनों के बीच में बैलेंस बनाए हुए है विष्णु।
And Vishnu is the one maintaining the balance between both of them.
न दुखधाम में और न शांति धाम में, वो रहता है सुखधाम में।
He is neither in the abode of sorrow nor is he in the abode of peace. He lives in the abode of happiness.
तो तीन मूर्तियां हैं तीन धाम क्रिएट करने वाली।
So there are three personalities that create the three abodes.
क्या?
What?
इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा की मूर्ति को याद करने के लिए मना किया था।
That is why Shiva Baba has prohibited the children from remembering the personality of Brahma.
इसलिए मना किया था।
Why did he prohibit it?
कि अगर ब्रह्मा की मूर्ति को याद करेंगे तो जैसे को याद करेंगे तो अंत मते तो गते बन जाएगी, नीचे गिर पड़ेंगे।
It is because if they remember the personality of Brahma, then as is the one whom you remember, your final thoughts will lead you to your destination. You will fall.
इस राज को जो देह अभिमानी थे, जिन्होंने देह को प्यार किया, ब्रह्मा की देह को याद करना भूल न सके, उन्होंने नहीं समझ सके.
The ones who were body conscious, who loved the body, who couldn't forget to remember the body of Brahma, couldn't understand this secret.
और तुम बच्चों ने समझ लिया?
And your children understood it.
क्यों समझ लिया?
Why did you understand it?
क्योंकि तुमने ब्रह्मा से साकार में पालना नहीं ली.
It is because you haven't received the sustenance of Brahma in the corporeal form.
जिन्होंने साकार में पालना ली, वो ब्रह्मा की देह में फंसे.
Those who received the sustenance in the corporeal form got entangled in the body of Brahma.
और जिन्होंने पालना नहीं ली, वो ब्रह्मा की देह में फंसे भी नहीं और मुरलियों को ग्रस्त किया. मुरलियों को पकड़ा.
And those who didn't receive this sustenance didn't get entangled in the body of Brahma and also grasped the murlis. They caught hold of the murlis.
मुरलियां सुनाने वाली आत्मा ब्रह्मा की सोल है या निराकार शिव की सोल है?
Is it the soul of Brahma or the soul of the incorporeal Shiv that narrated the murlis?
निराकार शिव ने आकर के ज्ञान सुनाया ना?
It is the incorporeal Shiv who narrated the knowledge when he came, didn't he?
वो ज्ञान की प्रॉपर्टी ब्रह्मा की नहीं है.
That property of knowledge doesn't belong to Brahma.
वो मनुष्य गुरु समझते हैं, वो ब्राह्मण समझते हैं कि गीता का ज्ञान दाता साकार में दादा लेखराज ब्रह्मा था.
Those human gurus, those Brahmins think that the giver of the knowledge of the Gita in the corporeal form was Dada Lekhraj Brahma.
लेकिन ये गलत बात है.
But this is wrong.
ब्रह्मा को भी अपने साक्षात्कारों का ज्ञान यज्ञ के आदि में किसी और व्यक्ति ने दिया था.
In the beginning of the yajna, someone else gave Brahma the knowledge of his visions.
वो राम वाली आत्मा थी.
That was the soul of Ram.
इसलिए मुरली ने बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है.
That is why it is said in the Murlis, the father is called Ram, the child is called Krishna.
वो कृष्ण बच्चा मृदुल पार्ट बजाता है.
That child Krishna plays a soft role.
मीठा मीठा प्यार भरा पार्ट बजाया.
He played a sweet part full of love.
मीठी मीठी भाषा से ज्ञान दिया.
He narrated the knowledge in a sweet language.
उस मिठास में दुनिया के जितने भी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं थी वो सब आकर के ब्राह्मण बनकर के इकट्ठी हो गई.
In that sweetness, the elevated souls of all the religions of the world came and gathered becoming Brahmins.
इसलिए ब्राह्मणों की पुरियां गाई हुई है.
That is why the categories of Brahmins are famous.
नौ विशेष धर्म है तो नौ ब्राह्मणों की कुड़ियां गाई हुई है.
देर आर नाइन स्पेशल रिलीजन, देर फॉर द नाइन कैटेगरीज ऑफ ब्राह्मण्स आर फेमस.
कहते हैं नौ ऋषियों से नौ गोत्र पैदा हुए.
इट इज सेड नाइन कैटेगरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नाइन सेजेस.
उनमें सबसे श्रेष्ठ सूर्यवंशी.
द सन डायनेस्टी इज द मोस्ट एलिवेटेड अमंग देम.
फिर है चंद्रवंशी, फिर है इस्लाम वंशी, फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार.
आफ्टर देम इज द मून डायनेस्टी, देन इज द इस्लाम डायनेस्टी, देन द अदर्स आर नंबर वाइज, मीनिंग वन आफ्टर द अदर अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ.
जो नई दुनिया बनेगी वो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस के ग्रुप के द्वारा बनेगी या सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के द्वारा बनेगी?
विल द न्यू वर्ल्ड बी एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रुप ऑफ द इस्लाम फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिस्ट of the Christians or will it be established by the Suryavanshi and Chandravanshi? Chandravanshi meaning those of the moon dynasty.
जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं होंगी वो नई दुनिया बनाने के निमित्त बनेगी.
The Suryavanshi and Chandravanshi souls will become instruments to create the new world.
तो ज्ञान सूर्य का पार्ट हुआ शिव का, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ.
So the role of the son of knowledge is of Shiv. Who is called Shiv Shankar Bholenath, meaning the Lord of the Innocent Ones.
और ज्ञान चंद्रमा का पार्ट हुआ ब्रह्मा का.
And the role of the moon of knowledge is of Brahma.
जो ब्रह्मा शंकर के मस्तक में भी दिखाया जाता है.
That Brahma is also shown on the head of Shankar.
जो अधूरा ब्रह्मा ताली के मस्तक पर भी दिखाया जाता है. जो ब्रह्मा दुर्गा के मस्तक पर भी दिखाया जाता है.
The incomplete Brahma is also shown on the head of Kali. That Brahma is also shown on the head of Durga. Kali and Durga means one of the nine forms of Parvati.
अधूरा ब्रह्मा है.
He is the incomplete Brahma.
उस अधूरे ब्रह्मा के स्वरूप को मुसलमान आत्मा बहुत मानती है.
The Muslim souls hold that form of the incomplete Brahma in great regard.
उनके झंडे के चित्र में भी दूध का चांद दिखाया जाता है.
The new moon is also shown on the national flag.
अधूरे चांद को मानती है, संपूर्ण चांद को नहीं मानती. क्यों?
They accept the half moon. They do not accept the full moon. Why?
क्योंकि जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बनेगी तो वो क्या बन जाएगी?
It is because when the soul of Brahma becomes complete, what will it become?
सूर्यवंशी बन जाएगी.
He will become सूर्यवंशी.
ब्रह्मा की सोल भी बाप समान सूर्यवंशी बन जाएगी.
The soul of Brahma will also become सूर्यवंशी like the father.
अधूरा चंद्रमा है तो विदेशियों को और विधर्मियों को बहुत प्रिय, क्योंकि उसमें लूजनेस होती है.
The incomplete moon is very dear to the Videshi and Vidharmi because there is looseness, meaning leniency in him. Videshi, meaning foreign religion souls. Vidharmi, meaning those whose beliefs and practices are opposite to that set by the father.
और संपूर्ण चंद्रमा है तो वो looseness खत्म हो जाती.
And when it is the complete moon, that looseness ends.
जो आतताई बच्चे होते हैं वो माँ की कमजोरी का लाभ उठाते हैं.
The tyrant children take undue advantage of the weakness of the mother.
और बाप से दूर भागते हैं.
And run away from the father.
जो बाप के पावरफुल औरस बच्चे होते हैं वो बाप के नजदीक आते हैं क्योंकि सच्चे बच्चे हैं.
The powerful, legitimate children of the father come close to the father because they are the true children.
जो सच्चा होता है वो अपने जीवन में नाचता रहता है, उसे किसी से नजर झुकाने की या नजर बचाने की दरकार नहीं रहती.
The one who is true keeps dancing in his life. There is no need for him to lower the eyes or to avert the eyes from anyone.
तो ऐसे श्रेष्ठ बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे, वो तुम बच्चे हो जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हो और पढ़ करके नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हो.
So, you children are such elevated children, the Suryavanshi children, who study the complete teaching and become instruments in the establishment of the new world.
लक्ष्मी नारायण के चित्र में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी त्रिमूर्ति के चित्र में.
The picture of Lakshmi Narayan doesn't have as much knowledge as the picture of the Trimurti.
क्यों?
Why?
त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों धाम की नॉलेज आ जाती.
The picture of the Trimurti contains the knowledge of all the three abodes.
Sukadham ki bhi knowledge hai, Dukadham ki bhi knowledge hai aur Shanti dham ki bhi knowledge.
There is the knowledge of the abode of happiness, the knowledge of the abode of sorrow as well as the knowledge of the abode of peace.
Dukadham ka chitran diya gaya hai Brahma ke roop mein.
The picture of the abode of sorrow is shown in the form of Brahma.
Sukadham ka chitran diya gaya hai Vishnu ke roop mein.
The picture of the abode of happiness is shown in the form of Vishnu.
और शांति धाम का चित्र दिया गया है शांति देवा शिव शंकर भोलेनाथ की.
And the picture of the abode of peace is shown in the form of the deity of peace, शिव शंकर भोलेनाथ.
तो त्रिमूर्ति गोला मुख्य है, इनमें बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज है.
So, the Murti and the world drama wheel are the main pictures. They contain very good knowledge.
लक्ष्मी नारायण के चित्र में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी त्रिमूर्ति गोले में.
The picture of Lakshmi Narayan doesn't have as much knowledge as the picture of the Trimurti and the world drama wheel.
हाँ, इसमें भी ऊपर में त्रिमूर्ति दिया गया है.
Yes, the Trimurti is shown above in this Lakshmi Narayan as well.
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नरसिंह नारायण बनाने की नॉलेज देते.
शिव बाबा गिव द नॉलेज टू मेक अ मैन इंटू नारायण थ्रू ब्रह्मा.
सारे चक्र की नॉलेज इनके पास है.
He has the knowledge of the entire cycle.
अब गवर्नमेंट समझती है कि प्रजा कम हो.
नाउ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट देयर शुड बी लेस सब्जेक्ट्स.
बर्थ कंट्रोल करते रहते हैं.
दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू कंट्रोल द बर्थ रेट.
परंतु ये प्रजा तो कम नहीं होनी है.
बट द नंबर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल नॉट बिकम लोअर.
सन 47 से जब से ये गवर्नमेंट बनी है ये प्रयास करती है कि जनसंख्या न बढ़े.
From the time this government has been formed, from the year 47, it has been making attempts so that the population doesn't increase.
Birth control करते ही रहते हैं.
They constantly try to control the birth rate.
हॉस्पिटलों में करते रहते हैं, शिविर लगा के करते रहते हैं.
They keep doing that in the hospitals. They keep doing that by organizing educational camps.
लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है?
But is the population increasing or decreasing? Students, it is increasing.
पहले इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती थी. जब अंग्रेज गवर्नमेंट का राज था.
Earlier, the population didn't increase so much when it was the kingdom of the British government.
और जब भारतीय गवर्नमेंट का राज्य आया तो जनसंख्या पहले थी 40 करोड़ सन 47 में.
And when the rule of the Indian government came into existence, first the population was 40 crore, that is 400 million in the year 47.
और अब हो गई 80 दुगनी, ढाई गुनी से भी ऊपर.
And now it is twice, 2.5 times the number.
100 करोड़ से ऊपर भारत की आबादी हो गई.
The population of Bharat has gone over 1 billion.
तो नर चाहत कछ और है और होवत है कछ और.
So, man proposes and God disposes.
जो चाहते हैं वो नहीं होता है.
What man wants doesn't happen.
ड्रामा बना बनाया है.
The drama is preordained.
मनुष्य के करने से स्वर्ग नहीं बन सकता.
Paradise cannot be created through human beings.
ये दुनिया जो इतनी फैल चुकी है उसे बड़ी दुनिया को नष्ट करने के लिए परमात्मा का प्लान ही सफल हो सकता है.
Only the supreme soul's plan can be successful to destroy this big world that has expanded so much.
और वो प्लान तो तभी बन चुका था जब गांधी जी ने आवाज लगाई थी हे पतित पावन आओ.
And that plan was ready from the very time when Gandhi ji raised his voice. Oh purifier of the sinful ones come.
आवाज लगाने वालों को पता नहीं चला कि वो पतित पावन भारत में आ चुका.
The ones who raised their voice didn't come to know that the one who purifies the sinful ones has already come in Bharat.
वो family planning का शास्त्र जो गाया हुआ है गीता जिससे महाभारी महाभारत ग्रहयुद्ध तो हुआ और सारे कौरव और यादव खलास हो गए.
The scripture of the family planning which is famous as the Gita because of which the massive civil war of Mahabharat took place and all the Kauravas and Yadavas were destroyed. Kauravas, descendants of Kuru. Yadavas, descendants of Yadu.
कितने बचे?
How many were left?
कहते हैं 5 पांडव बचे.
They say that the 5 Pandavas were left.
माने उंगलियों पर गिने जाने योग्य थोड़ी सी आत्माएं बचती.
It means that just few souls that can be counted on the fingers are left.
वो family planning का शास्त्र है, गीता शास्त्र है, अब तैयार हो रहा.
That scripture of the family planning, the scripture Gita, is being prepared now.
वो हिंदू मुसलमान सिखों के जो शास्त्र हैं, वो तो मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं.
The scriptures of those Hindus, Muslims, Sikhs are prepared by human gurus.
भारत में जो शास्त्र गीता शास्त्र है वो भी मनुष्यों का बनाया हुआ है.
द स्क्रिप्चर गीता विच इज इन भारत इज ऑल्सो मेड बाई ह्यूमन गुरुज.
लेकिन उन शास्त्रों को कोई बैठ करके लिखता नहीं है.
बट नो वन सिट्स एंड राइट्स दो स्क्रिप्चर्स.
धर्म पिता नहीं लिखता है. धर्म पिता तो डायरेक्ट आकर के ज्ञान सुनाता है.
द रिलीजियस फादर डजेंट राइट देम. द रिलीजियस फादर कम्स एंड नरेट्स नॉलेज डायरेक्टली.
जैसे इब्राहिम ने सुनाया, क्राइस्ट ने सुनाया, उन्होंने कोई बाइबल लिखी थोड़े ही.
जस्ट लाइक इब्राहिम नरेटेड नॉलेज, क्राइस्ट नरेटेड नॉलेज, ही डिडंट राइट द बाइबल.
गुरु ग्रंथ साहब कोई गुरु नानक ने थोड़े ही लिखा.
गुरु नानक डिडंट राइट द गुरु ग्रंथ साहिब मीनिंग रिलीजियस बुक ऑफ द सिक्स.
उन्होंने तो बैठ करके सुनाया.
ही सेट एंड नरेटेड इट।
ऐसे ही भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं।
सिमिलरली व्हेन गॉड कम्स टू दिस वर्ल्ड ही नरेट्स डायरेक्टली थ्रू द माउथ।
वो बैठ करके लिखते नहीं है, न लिखी लिखाई गीता का एक्सप्लेन करते हैं।
ही नीदर सिट्स एंड राइट्स नॉर डज ही एक्सप्लेन द रिटन गीता।
तो उन्होंने आकर के जो बोला, जो सच्चाई बोली, उस सच्चाई से सत्य को स्थापन होता है।
So whatever he spoke when he came, the truth that he spoke, the golden age is established through that truth.
अभी बाप कहते हैं, मैं देता हूँ तुम बच्चों को फैमिली प्लानिंग का शास्त्र गीता।
Now the father says, I give you children the scripture of the family planning, the Gita.
शास्त्र माने शासन करने वाली।
शास्त्र that is scripture means the one who rules, that is शासन करना।
सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, जिससे आसुरी दुनिया का विनाश होगा और दैवी दुनिया की स्थापना होगी।
आई गिव यू द मोस्ट एलिवेटेड नॉलेज थ्रू विच द डेविलिश वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द वर्ल्ड ऑफ द डीटीज विल बी एस्टेब्लिश्ड।
तो अभी दुनियावी तरीके से कम नहीं होगी।
सो नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वोंट डिक्रीज विद द मेथड्स ऑफ द वर्ल्ड।
ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ही दुनिया का नाश होनी है।
This world has to be destroyed with the help of the knowledge of God.
अभी तो कलयुग अंत है।
Now it is the end of the Iron Age.
एक तो रहने के लिए लोगों को जगह ही नहीं।
One thing is that people don't have a place to even live.
कितना नुकसान होता रहता है तुम समझा सकते हो? इसी भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
There is so much harm. You can explain there was the kingdom of Lakshmi and Narayan in this Bharat itself.
जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्रजा कितनी थोड़ी थी।
There were very few subjects when it was the kingdom of Lakshmi and Narayan.
और अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है।
And now it is not the kingdom of Lakshmi and Narayan.
किसका राज्य है?
Whose kingdom is it?
प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य।
It is the rule of the subjects over the subjects.
बाप कहते हैं ये प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य।
The father says, this rule of the subjects over the subjects is an illegal rule.
इसे बेकायदे राज्य में कोई सुखी नहीं हो सकता।
Nobody can be happy in an illegal kingdom.
मैं आता हूँ तो राजाओं का राज्य स्थापन करता हूँ।
When I come, I establish the kingdom of the kings.
इन राजाओं को राजा बनाने की कला और किसी के पास नहीं।
No one else has this art of making the kings into kings.
मैं ही आकर के ऐसा ज्ञान देता हूँ राजयोग का, जो राजयोग सीख करके तुम बच्चे राजा बनते हो और अनेक जन्मों के लिए राजा बनते हो।
I myself come and narrate such knowledge of the Rajyog, the Rajyog you study and through which your children become kings and you become kings for many births.
वो डॉक्टर बनते हैं एक जन्म के लिए, इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं।
They become doctors for one birth. They study so much.
वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं।
They study law, they become engineers.
कितनी मेहनत करते हैं और पढ़ाई पढ़ने के बाद भी कोई पक्का नहीं है कि कोई इंजीनियर बन ही जाए, डॉक्टर बन ही जाए, वकील या जज बन ही जाए।
They work very hard. Still it is not sure that even after studying the studies, they will become engineers or doctors, lawyers or judges.
लेकिन ये सब पढ़ाई में पक्की बात है कि अगर तुम जैसे मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ वैसे ही अगर रेगुलर और पंक्चुअल बन करके ये पढ़ाई पढ़ते रहोगे तो मैं गारंटी करता हूँ तुम राजपद जरूर पाओगे।
बट इट इज श्योर इन दी स्टडीज दैट इफ यू कीप स्टडिंग दिस नॉलेज एज आई टीच यू बीइंग रेगुलर एंड पंक्चुअल आई गारंटी दैट यू विल सर्टेनली रिसीव अ रॉयल पोजीशन।
ये राजाई की पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता सिवाय परम पिता परमात्मा की।
No one else apart from the Supreme Father, Supreme Soul can teach the study of kingship.
और अनेक जन्मों के लिए देता है।
And he gives it for many births.
इतने दुनिया में सृष्टि में छोटे बड़े राजाएं हुए।
There have been so many small and big kings in the history in the world.
इन राजाओं को राजा ही करना किसने सिखाया? कोई कॉलेज खुला था?
Who taught these kings to rule? Was any college opened?
मनुष्य गुरुओं ने कोई कॉलेज खोला राजा बनाने के लिए? नहीं।
Did the human gurus open any college to create kings?
नो
ये तो संगम युग में बाप आते हैं तो आकर के राजा जी की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
It is the father who comes in the confluence age and teaches the study of kings when he comes.
ये राजयोग है, इस राजयोग में ये राज भरा हुआ है कि तुमको अपनी इंद्रियों के ऊपर कैसे राजाई कर सकते हो।
This is Rajyog. It contains the secret about how you can rule over your indriya. Parts of the body used to perform actions and the sense organs.
अपनी इंद्रियों को जितना कंट्रोल करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के लिए तुम बड़े राजा बनेंगे।
The more you control your indriya, the bigger the king you will become for many births.
Yeah, practical जीवन में अपने को देख सकते हो।
You can observe yourself in life in practice.
सुबह से लेकर के शाम तक अपने को चेक करना है कि हमारी इंद्रियां कितना हमारे अपने कंट्रोल में रही।
You have to check yourself from morning till evening to what extent your indriya remained under your control.
अगर कंट्रोल में है तो बाप भी खुश होगा।
If they are under control, the father will also become happy.
अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है।
Now your children have to make पुरुषार्थ।
क्या?
What?
स्वकीय इंद्रियों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना है और दूसरों को करना है।
You have to make the पुरुषार्थ of controlling the इंद्रिय of the self and also make others do this.
औरों को समझाना है लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधा कृष्ण को दिखाया गया।
You have to explain to others that Radha Krishna is shown below the picture of Lakshmi Narayan.
क्यों दिखाया गया नीचे?
Why are they shown below?
Radha Krishna के चित्र को लक्ष्मी नारायण के ऊपर क्यों नहीं दिखाया गया?
Why isn't the picture of Radha Krishna shown above the picture of Lakshmi Narayan? Student said something.
Radha Krishna को लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे इसलिए दिखाया गया है कि रचयिता हमेशा ऊपर होता है और रचना नीचे होती है।
The picture of Radha Krishna is shown below the picture of Lakshmi Narayan because the creator is always above and the creation is below.
रचना कम पावर वाली होती है और रचयिता ज्यादा पावर वाला होता है।
The creation has less power and the creator has more power.
इसलिए लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया है और राधा कृष्ण को नीचे बच्चे के रूप में दिखाया है।
That is why Lakshmi Narayan is shown above and Radha Krishna is shown below in the form of the children.
इतनी सी बात भी वो तथाकथित मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं समझ सकते।
Those so-called मुखवंशावली Brahmins cannot understand even a small thing like this.
उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं।
This topic doesn't sit in their intellect.
क्या?
What?
वो उल्टा समझते हैं और समझाते हैं।
They understand and explain the wrong things.
वो समझाते हैं कि राधा कृष्ण जब बड़े हुए तो ये लक्ष्मी नारायण बन गए।
They explain that when Radha Krishna grew up, they became this Lakshmi Narayan.
अरे हमें बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है?
अरे what aim has Baba given us?
नरसिंह नारायण बनने का लक्ष्य दिया है या नरसिंह प्रिंस बनने का लक्ष्य दिया है?
Has he given us the aim of becoming Narayan from a man or a prince from a man?
नरसिंह नारायण बनने का लक्ष्य दिया है।
He has given the aim of becoming Narayan from a man.
राधा कृष्ण के रूप में मम्मा बाबा की आत्माएं जाकर के प्रिंस बनेंगी।
The souls of Mamma and Baba in the form of Radha and Krishna will become prince and princess.
पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेंगी और बड़े होकर के फिर अपने माँ बाप का टाइटल अपने माँ बाप से लेंगी।
They will be born in the form of the first prince and princess, and after growing up, they will take the title from their parents.
Shiv Baba से नहीं लेंगी।
They will not take it from Shiv Baba.
और हम?
And what about us?
हम इसी नर जीवन में पुरुषार्थ करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके इसी जीवन में इसी विश्व में राजाई करने के हकदार बने।
In this very human birth, by making पुरुषार्थ, By controlling our indriya, we will become entitled to rule in this very life, in this very birth.
Sara vishwa hamare control mein hoga.
The entire world will be under our control.
Aise to sari duniya mein ek bhi manushya aisa istri mein nahi hua jisne sari duniya ke upar raj kiya ho.
In history, there was not even a single human being in the world who ruled over the entire world.
Bhale Hitler, Mussolini. नेपोलियन इनका नाम गाया हुआ है ये बड़े महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने आक्रमण करके कोशिश की कि सारी दुनिया को कंट्रोल कर ले।
although the names of Hitler, Mussolini, Napoleon are famous for them being very ambitious and they waged a war and tried to take the entire world under control.
लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता.
But no one can become the emperor of the world through physical power.
ये तो परमात्मा बाप ही आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम अहिंसा के आधार पर सारी दुनिया के ऊपर विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं.
The Supreme Soul Father himself comes and gives such teaching through which we can receive the emperorship of the entire world through non-violence.
हमें कोई भी हिंसा का आधार लेने की जरूरत नहीं है.
We don't need to take support of any kind of violence.
मन से हिंसा भी नहीं करनी है, वाचा से भी हिंसा नहीं करनी है और कर्मेंद्रियों से भी कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी.
We must neither use violence mentally, nor should we use violence through words. Neither must we use any kind of violence through the karmendriya, means parts of the body used to perform actions.
So, अभी तुमको दैवी गुण धारण करने हैं.
So you have to assimilate divine virtues now.
Time तो लगता है.
It does take time.
एक तो ऐसी दुनिया का दिल से पूरा संन्यास करना है, जो दुखदायी दुनिया है, रावण संप्रदाय की दुनिया है.
The first thing is, from the heart, you have to completely renounce such world, which is the world of sorrow, the world of the community of Ravan.
Ravan कहा जाता है रुलाने वाले को.
The one who makes others cry is called Ravan.
और राम कहा जाता है रमण कराने वाले को, खिलाने वाले को, सुख देने वाले को.
And the one who delights others, the one who makes them play, the one who gives them happiness is called Ram.
तो हमें तो राम राज्य लाना है.
So we have to bring the kingdom of Ram.
राम राज्य लाने के लिए राम की पहचान जरूरी है.
It is necessary to recognize Ram to bring the kingdom of Ram.
रावण की भी पहचान जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि हम रावण के पंजे में फंस जाएं.
It is also necessary to recognize Ravan in case we get trapped in the clutches of Ravan.
तो राम क्या है और रावण क्या है?
So who is Ram and who is Ravan?
रावण है अनेक प्रकार की मत देने वाला और राम है एक तरह की मत देने वाला.
Ravan is the one who gives various types of opinions and Ram is the one who gives one type of opinion.
कोई कोई दुकान ऐसी होती है तो उस पे लिखा होता है एकदम.
There are some shops on which it is written fixed price.
और कोई कोई दुकानदार ऐसे होते हैं कि 10 बार चीज का दाम बदलेंगे.
And there are some shopkeepers who will change the price of a product 10 times.
एक मुख से अभी एक दाम बोलेंगे, एक घड़ी दूसरा दाम बोल देंगे, तीसरी घड़ी में तीसरा दाम बोल देंगे.
Right now they will say one price. 1 to 2 hours later they will say another price. 3 hours later they will say a third price.
उनका दाम बदलता रहता है क्योंकि झूठे हैं.
Their price keeps changing because they are false.
जो सच्चा होता है उसे बार बार बात बदलने की दरकार नहीं होती, कहते ये तो दुमुहा है.
The one who is true doesn't need to change his words again and again. It is said he is two-faced.
दुमुहा माने दो मुंह से बात करने वाला है.
Two-faced means the one who speaks through two mouths.
इसलिए चित्र बनाए हुए हैं.
That is why pictures have been made.
रावण का चित्र 10 मुखों का बनाया हुआ है.
They have made the picture of Ravan with 10 faces.
और ब्रह्मा का चित्र 5 मुखों का, 4 मुखों का बनाया हुआ है.
And Brahma's picture with 5 to 4 faces.
और कार्तिकेय का मुख 6 मुख वाला बनाया हुआ है.
And Kartikeya has been shown with 6 faces.
कहते हैं शंकर को 2 बच्चे थे.
It is said शंकर had 2 sons.
एक ज्ञानी तू आत्मा बच्चा था गणेश और दूसरा बच्चा था कार्तिकेय.
One was a knowledgeable child गणेश and the other was कार्तिकेय.
कार्तिकेय को जो 6 मुख दिखाए गए हैं वो वास्तव में 6 बाद वाले जो धर्म आते हैं विधर्मी और विदेशी उन 6 मुखों की बातें करता है.
एक्चुअली द 6 फेसेस ऑफ कार्तिकेय, the 6 religions that come later on, the Vidharmi and the Videshi religions, he speaks through those 6 mouths.
Islam dharm, Bodhi dharm, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास, मुस्लिम और सिख धर्म.
Islam, the Buddhist religion, the Christian religion, Sannyas, the Muslim religion and the Sikh religion.
ये छह धर्मों के लिए छह मुख की बातें करता है.
He speaks for these six religions through the six mouths.
कभी किसी को सपोर्ट करके बोलेगा, कभी किसी को सपोर्ट करके बोलेगा.
Sometimes he will speak in support for someone, sometimes he will speak in support for someone else.
इसलिए उसको छह मुख दिखाई गई.
That is why he is shown with six faces.
नाम क्या रख दिया है? कार्तिक.
What name is he given? कार्तिक.
क्या करे? टिक टिक बहुत करता है.
What does he do? He speaks a lot.
तो टिक टिक करने से कभी स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता.
So paradise can never be established by speaking a lot.
बाप आते हैं, बताते हैं बच्चे, अब मैं जो बताता हूँ तुमको वही तुम दूसरों को बताओ, उसमें अपनी मनमत मिक्स करके सुनाने की बात नहीं है.
The father comes and says, children, tell the others only what I tell you now. There is no question of mixing your own opinion and telling it to others at all.
मनमत से या मनुष्यों की मत से रावण राज्य बनता है.
The kingdom of Ravan is created through personal opinions or the opinions of human beings.
और मेरी मत पर चलने से राम राज्य बनेगा.
And the kingdom of Ram will be created by following my directions.
तुम खुद राम राज्य स्थापन नहीं करते हो.
You yourself don't establish the kingdom of Ram.
श्रीमत पर तुम राम राज्य स्थापन करते हो.
You establish the kingdom of Ram with श्रीमत.
तो ऐसी दुखदाई दुनिया का पूरा संन्यास करना है.
So you should completely renounce such sorrowful world.
बुद्धि भी कहती है कि अब ये पुरानी दुनिया है, तामसी दुनिया है.
The intellect also says that this world is old now. It is a tamsi, that is degraded world.
अभी हम अपने घर जाते हैं.
Now we go to our home.
हमारा बाबा आया हुआ है.
Our baba has come.
सारा दिन बाबा याद पढ़ना चाहिए.
You should remember baba all day long.
क्या?
What?
सारा दिन बाबा को याद करें, फिर पेट पूजा कैसे करें? है?
Should we remember Baba the whole day? Then how will we fill our stomachs?
पेट पूजा करने की दरकार है या नहीं है?
Is there the need to fill the stomach or not?
है.
There is.
है? बाप तो कहते हैं कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते. फिर पेट पूजा की हमको क्या दरकार?
The father does say, my children cannot die of hunger. Then what is the need for us to fill the stomach?
है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
Does he say so or not?
बाप कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते.
The father says, my children cannot die of hunger.
सर्विसेबल बच्चे कब भूख मर न सके?
The serviceable children can never die of hunger.
जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगे हुए होंगे वो भूख मर सकते हैं. क्यों?
Those who won't be engaged in the service of God can die of hunger. Why?
क्योंकि बता दिया है आगे चल करके सब धंधों में नुकसान होने वाला.
Because it was said, in the future there will be loss in all the businesses.
सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के.
There is loss in all the businesses except for the one business of God.
ईश्वरीय धंधा ऐसा बढ़ेगा दुनिया में कि जिसमें पैसे की भरमार हो जाएगी.
The business of God will increase to such an extent in the world that there will be an abundance of money in it.
सारी दुनिया का सोना चांदी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा.
The gold and silver of the entire world will be at your feet.
तो कौन सा धंधा करना चाहिए?
So, which occupation should you do? Everyone says, the service of God.
Then?
Then?
और करते कौन से हैं?
And which one do you do?
अभी भी. भारत के अंदर देख लो चाहे दूसरे देशों में. जो भी कल कारखाने हैं पुराने पुराने चलने वाले वो सब बंद होते जा रहे हैं.
Even now, either see it in Bharat or in the other countries, all the old factories are closing.
जो धंधा दोरी करते हैं वो जानते हैं कि छोटे छोटे धंधों में कोई कुछ फायदा होता नहीं है.
Those who do business know that there is no profit from small businesses.
जो बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं बड़े लेवल पर उनमें फायदा हो रहा है.
There is profit from the big businesses on a high level.
वो फायदा जो होता है वो गरीबों को गरीब बनाता जा रहा है और साहूकारों को साहूकार बनाता जा रहा है. तो आखिर ये कब तक चलेगा?
That profit makes the poor poorer and the rich richer. So how long will this continue?
ऐसी स्थिति एक दिन आ जाएगी जो मारामारी शुरू हो जाएगी.
Such situation will arise one day when beating and killing will start taking place.
इसलिए बोला है मुरली में जब विनाश शुरू होगा तो पहले पहले अकाल पड़ेगा.
That is why it has been said in the Murli, when destruction starts, famine will break out first of all.
अकाल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल बरसात नहीं होती है तो ही अकाल पड़ता है.
It is not that famine breaks out only when it doesn't rain at all.
बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो भी अकाल हो जाए क्योंकि कुछ पैदा नहीं होगा.
Famine will also break out when it rains too much because nothing will grow.
बेमौसम बरसात हो जाती है तो भी कुछ पैदा नहीं होता.
Nothing grows even when it rains at odd seasons.
और अकाल मालूम नहीं पड़ता है.
And no one comes to know of the famine.
क्योंकि गवर्नमेंट समझती है अगर हम अकाल अभी घोषित कर देंगे तो गवर्नमेंट पापाचारी साबित हो जाती है.
Because the government thinks if we declare famine now, the government is proved to be corrupt.
अपने भारतीय शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि जो दुराचारी राजा होता है उसके राज्य में अकाल पड़ता है.
It has been written in our Indian scriptures that famine breaks out in the kingdom of a corrupt king.
इसलिए भारत की गवर्नमेंट अकाल घोषित नहीं करती है.
That is why the government of Bharat doesn't declare famine.
अगर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो अकाल अभी भी पड़ा हुआ है.
If you ask it in a true sense, then famine has broken out even now.
आखिर कब तक छुपाएंगे?
Finally, how long will they hide it?
आगे चल करके अकाल घोषित करना पड़ेगा.
They will have to declare famine in the future.
पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी लोगों को.
People won't get even a drop of water.
नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा.
There will be rise in prices to such an extent that bundles of notes will be lying on the road and there won't be food to eat.
लेकिन बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते.
But the children of the father can't die from hunger.
अभी भी खिचड़ी खाते हैं और तब भी आराम से खिचड़ी खाएंगे.
You eat khichdi now and then too you will eat khichdi comfortably. Khichdi means a simple dish cooked with rice and pulses.
दुनिया के जो झूठे झूठे धंधे हैं, झूठे झूठे धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उनमें पैसे की कमी नहीं पड़ती कभी भी.
The false businesses of the world, the false religious communities that have spread never run short of money.
तो शिव बाबा आकर के तो सच्चाई का धंधा करता है.
And शिव बाबा runs the true business when he comes.
सत्य ज्ञान सुनाता है, शक्तियों की स्थापन करता है, उसमें पैसे की कमी पड़ने की कोई बात नहीं हो सकती.
He narrates the true knowledge. He establishes the age of truth, meaning Satyug, that is the golden age. There cannot be a question of shortage of money in it.
तो बाबा आया हुआ है. तुम बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा याद आने चाहिए.
So Baba has come. You children should remember Baba and only Baba the whole day.
अभी यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं. इस समय तुम ये धारण करेंगे तो फिर वो संस्कार साथ जाएंगे.
Now you have to assimilate divine virtues here. If you assimilate them at this time, those संस्कार will go with you.
जैसे बाबा मिलिट्री के लिए समझाते हैं कि वो मिलिट्री वाले संस्कार ले जाते हैं.
Just as Baba explains about the people in the military, meaning army, that they take with them the sanskars.
यहाँ लड़ाई में मरते हैं तो वहाँ भी जाकर के जन्म लेते हैं और फिर मिलिट्री में भर्ती हो जाते
हैं. Here they die in a fight, then they are born there and they join the military again.
उनके संस्कार ही ऐसे पड़ जाते हैं कि उन्हें लड़ाई लड़नी ही लड़नी है।
They have such संस्कार that they certainly have to fight.
तुम्हारी भी रूहानी मिलिट्री है।
Yours is also the spiritual military.
तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं लड़ते हो।
You don't fight a violent war.
तुम्हारा रूहानी युद्ध है।
Yours is the spiritual war.
रूहानी युद्ध रूह की पावर से लड़ा जाता है।
The spiritual war is fought through the power of the soul.
देह की कर्मेंद्रियों से नहीं लड़ा जाता है।
It is not fought through the कर्मेंद्रिया of the body.
देह और रूह ये दोनों अलग अलग चीजें।
The body and the soul, both of them are separate.
रूह सूक्ष्म है और देह स्थूल है।
The soul is subtle and the body is physical.
देह पांच तत्वों की चीज है और रूह मन बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है।
The body consists of the five elements and the soul is the combination of mind, intellect and sanskar.
और रूह को पहचान देने वाला रूहानी बाप।
And it is the spiritual father who gives the introduction to the soul.
वो रूहानी बाप आकर के हमको बता रहा है कि बच्चे सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए।
That spiritual father is telling us after coming, children, What should you remember first of all when you wake up in the morning?
अपनी आत्मा याद आए।
You should remember your soul.
ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी।
If you lay this foundation of remembering the soul early in the morning at Amrit Vela, that is early morning hours, the remembrance of the soul and the supreme soul will become easy throughout the day.
स्वस्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे।
If you create the stage of the self, you will be free from circumstances.
परिचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे।
You will be free from thinking of others. You will be free from worries.
कहते भी हैं हम बहुत परेशान हैं।
People say we are very distressed.
इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है।
This means they are not in the dignity of the stage of the soul.
अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है।
If they are in the dignity of soul consciousness, all the worries will seem to be light.
जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है।
Just like when someone travels by airplane, the things below look very small.
ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इसे दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी।
Similarly, if we make our state spiritual, if we make our state soul conscious, then the biggest worry of this world will seem to be very small, very light.
तो अभी बाप आए हैं हल्का बनाने के लिए।
So now the father has come to make us light.
वो खुद भी हल्का फुल्का है और हमको भी आकर के हल्का फुल्का बनाता है।
He himself is light and he also makes us light when he comes.
वो सन्यासी होते हैं, सन्यास करते हैं घर बार का, जंगल में चले जाते हैं।
Those sannyasis renounce the household and go to the jungle.
जंगल में चले जाते हैं फिर भी खाते क्या है?
Although they go to the jungle, what do they eat?
कहाँ से आता है उनके पास खाना?
From where do they get the food?
है? भगवान उनको खाना दे देते हैं या कोई लाते हैं उनके पास खाना बना करके?
Does God give them food or does someone prepare the food and bring it to them?
है? गृहस्थी लोग शहरों से गांवों से खाना बनाकर उनके पास ले जाते हैं।
The householders from the cities and villages prepare food and take it to them.
तो गृहस्थियों का खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो मन कैसा बनेगा?
So if they eat the food prepared by the householders, how will their mind become like?
है? गृहस्थ की जो कीचड़ पट्टी की दुनिया से आया बना हुआ अन्न है वो उनकी बुद्धि को खराब करेगा कि नहीं करेगा?
Will the food made in the dirty world of the household spoil their intellect or not?
तो उनको जन्म कहाँ मिलता है?
So where are they born?
गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है।
They have to be born in the house of the householders.
माना सिर्फ घर बार छोड़ देने से काम नहीं चलेगा.
इट मीन्स दैट रिनाउंसिंग जस्ट द हाउस होल्ड वोंट वर्क.
संग दोष और अन्न दोष ये दोनों त्यागने पड़े.
वी हैव टू रिनाउंस बोथ द इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी दैट इज संग दोष एंड द इफेक्ट ऑफ बैड फूड दैट इज अन्न दोष.
संग दोष कैसे त्यागे?
हाउ शुड वी रिनाउंस द इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी?
हम बुद्धि से एक बाप का संग करें.
वी शुड बी इन द कंपनी ऑफ द वन फादर थ्रू द इंटेलेक्ट.
इस दुनिया में सब झूठे हैं.
ऑल आर लायर्स इन दिस वर्ल्ड.
झूठों को याद करेंगे तो झूठे बनेंगे. एक सत्य बाप को याद करेंगे तो सच्चे बनेंगे.
इफ वी रिमेम्बर लायर्स वी विल बिकम लायर्स. इफ वी रिमेम्बर द वन ट्रू फादर वी विल बिकम ट्रू.
संग दोष टूटता जाएगा.
द इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी विल ब्रेक.
और अन्न दोष?
एंड वॉट अबाउट द इफेक्ट ऑफ बैड फूड?
अन्न दोष के लिए जितना हो सके जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं.
रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ बैड फूड वी कैन नॉट रिलाई ऑन द सोल्स हु फॉलो द नॉलेज ईदर.
क्योंकि हम किसी के साथ साथ पीछे पीछे नहीं फिरते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थी है.
बिकॉज वी डोंट फॉलो एनीवन टू चेक वॉट काइंड ऑफ पुरुषार्थी मीनिंग समवन हु मेक्स स्पिरिचुअल एफर्ट ही इज.
हाँ अपने घर परिवार में तो हम 24 घंटे देखते हैं, साथ में रहते हैं.
यस वी सी अवर ओन फैमिली 24 आवर्स वी लिव टुगेदर विद देम.
तो अगर उनकी धारणा अच्छी है तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन ले सकते हैं.
सो इफ देयर वर्चुअस कंडक्ट दैट इज धारणा इज गुड वी कैन ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय देयर हैंड्स.
धारणा अच्छी नहीं है तो भोजन बनाने में आजकल देर नहीं लगती.
If their dharna is not good, then it doesn't take long to prepare food nowadays.
Cooker nikla hai, 10 minute mein bhojan taiyar kar deta.
The cooker has come up. It makes the food ready within 10 minutes.
Usme dal dalo, chawal dalo, aloo dalo. 10 minute mein taiyar ho jata.
Put pulses, rice and potatoes in it and within 10 minutes it is ready.
To bhojan ki koi aisi samasya nahi hai. कोई कहते हैं कि हमें भोजन बनाना नहीं आता.
सो देयर इजंट एनी प्रॉब्लम फॉर फूड. सम से वी डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड.
अरे मनुष्य क्या नहीं कर सकता है?
अरे इज देयर एनीथिंग दैट द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू?
मनुष्य दुनिया के सारे काम करता है तो भोजन बनाना नहीं सीख सकता? बहानेबाजियां कर लेते.
इफ अ ह्यूमन बीइंग डज ऑल द वर्क इन द वर्ल्ड कांट ही लर्न टू प्रिपेयर फूड? दे जस्ट गिव एक्सक्यूजेस.
कोई कहते हैं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5-5 दिन हमें बाहर रहना पड़ता है.
सम से वी हैव टू गो आउट फॉर 10-15 डेज, वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम होम फॉर 5 डेज.
बाप कहते हैं कि तुम डबल रेटी और दूध से भी काम चला सकते हो.
द फादर सेज यू कैन ऑल्सो मैनेज विथ ब्रेड एंड मिल्क.
फलों पर भी काम चला सकते हो.
यू कैन ऑल्सो मैनेज विथ फ्रूट्स.
कोई आत्मा हर जाए तो कच्ची सब्जी पर भी काम चला सकती है.
इफ सम सोल जस्ट चूज टू ईट ही कैन ऑल्सो मैनेज विथ रॉ वेजिटेबल्स.
जितना कायदा उतना फायदा.
द मोर वी फॉलो द रूल्स द मोर वी आर बेनिफिटेड.
अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया है.
वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट नाउ.
अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे.
If we don't pay attention now, the संस्कार will become strong forever.
जन्म जन्मांतर के संस्कार पक्के हो जाएंगे अन्न दोष और संग दोष के, फिर नीचे गिरते रहेंगे.
The संस्कार of bad food and bad company will become strong for many births. Then you will continuously fall.
द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू होता है.
The downfall starts from the copper age.
संग के रंग में आना शुरू होता है दूसरे धर्मों के.
The souls start coming in the color of the company of the other religions.
धर्म पिताओं के संग में आते हैं, उनके फॉलोअर्स के संग में आते हैं.
They come in the color of company of the religious fathers, their followers.
हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते हैं.
The Hindus themselves convert and go to the other religions.
तो ऐसा ना हो कि हम भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनते रहे, कभी मुसलमान बने, कभी क्रिश्चियन बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने.
So it should not happen that we also become the souls who convert. It shouldn't happen that sometimes we become Muslims, sometimes Sikhs and sometimes Christians.
नहीं.
नो
अपने धर्म में रहना अच्छा और दूसरे धर्म में रहना अच्छा नहीं
है. इट इज गुड टू रिमेन इन वन्स ओन रिलीजन एंड इट इज नॉट गुड टू गो टू अनदर रिलीजन.
स्वधर्म निधर्म से पर धर्मो भया वह.
स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भया वह. Meaning, it is better to die in one's own religion. The religion of others creates fear.
अपने धर्म जो है सुखदायी होता है.
Our own religion gives happiness.
अपना धर्म वो है जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं. और पराये धर्म वो है जो मनुष्य गुरु आकर के स्थापन करते हैं.
Our religion is the one established by the Supreme Soul Father when he comes, and the foreign religions are the ones established by the human gurus.
Om.
ओम शांति.
इसके फंक्शन में
किसी का शादी हो या तो कोई
मर गया हो, शादियों में जाकर के कोई सेवा कर पाए.
हूज फंक्शन?
अ स्टूडेंट इन मैरिज.
कुड यू डू एनी सर्विस बाय अटेंडिंग मैरिजेस?
शादियों में जाते हैं. शादी में जाने का लक्ष्य क्या होता है हमारा?
We go to attend marriages. What is our aim of attending marriages?
कि हम शादी में जाकर के कोई की सेवा करके आए. तो सेवा करके किसी को निकाल के लाए आज तक?
भोजन ये बताना.
We should go to marriages and serve someone. So, did you do service and bring out anyone in knowledge till now?
नहीं लाए ना. तो शादी से हमारा क्या लेना देना?
You did not bring anyone in knowledge, did you? So. What have we got to do with marriages?
जब हमारा शादी से लेना ही देना नहीं तो हम बाहर जाकर के अनुदोष में क्यों आए?
When we have got nothing to do with marriages, why should we go there and be influenced by bad food?
शादी में जाएंगे अनुदोष और संग दोष तो लगेगा.
If we go to attend marriages, we will certainly be influenced by bad food and bad company.